सुनाया है।
बहुत पहले ही अर्ज कर रहे हैं कि आप मार्कंडे मुनि के मुख से राम बीरजम श्रोष्यसी आप सुनेंगे, इसलिए मैं यहां नहीं कह रहा हूं, नर जी कहते हैं। तो वही दोनों रावण और कुंभकर्ण बाद में ये आपके मौसी के पुत्र हुए हैं, शिशुपाल और दंतवत, इस समय साप से मुक्त हो गए और कृष्ण के चक्र से इनका पाप नष्ट हो गया। मतलब ये दोनों नहीं मारे गए, उनका पाप मार दिया गया, कृष्ण चक्र हटा नहीं होता, तो दोनों मुक्त होकर पुनः भगवान के धाम में चले गए। तो वैर के कारण, द्रोह के कारण नित्य श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, इसीलिए पुनः श्री कृष्ण के धाम में वैकुंठ में चले गए। इस पर युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, राजसूय सभा में अपने इतने गुणवान पुत्र प्रहलाद के प्रति क्यों वैर किया हिरण्यकश्यपु? प्राय संसार में देखा जाता है कि गुणहीन बच्चे में भी पिता की प्रीति होती है, पिता स्नेह करता है अपने बच्चे से, लेकिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से द्रोह क्यों किया? और प्रहलाद कैसे कृष्ण कांसस हुए इसे भी समझाइए, कैसे कृष्ण में प्रहलाद का मन लग गया, कैसे भक्ति हुई? बड़ा सुंदर प्रश्न है। विद्वेषो दैत्य पुत्र कथम आसीत महात्मनि? आप बताइए कि अपने महात्मा और गुणवान प्रिय पुत्र में भी हिरण्यकश्यपु द्रोह क्यों किया? और ब्रूहि में भगवान जना प्रहलादस्य अच्युतात्मता, अच्युतात्मता कृष्णात्मता, और यह बताइए कि प्रहलाद महाराज किस कारण से कृष्ण के इतने पक्के भक्त हो गए, और उनकी भक्ति का वर्णन कीजिए, किस तरह भगवान कृष्ण में दृढ़ मति उनकी लगी हुई थी, इसको मैं सुनना चाहता हूं। तो हिरण्यकश्यपु क्यों द्रोह किया, और प्रहलाद महाराज में कितनी भक्ति है कृष्ण के प्रति, कैसे वे कृष्ण कांसस थे, उनकी कृष्ण भावना कैसी थी, इसको सुनाइए। तो युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न पर नारद मुनि कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। कल हिरण्यकश्यपु का प्रवचन है, उसका भी प्रवचन दूसरे अध्याय में दिया गया है। भगवान से द्रोह में बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है बहुत ऊंची बात। कल हिरण्यकश्यपु का प्रवचन होगा, मैं नारद जी उसको रिले करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री राम।
दृष्टि महाराज पूछ रहे थे जैसे कि कैसे वैकुंठ से उनके पास महाराज क्यों नहीं पर बोले कि वो ब्रह्म शास्त्र प्रतिबद्धता के लिए उनके कारण है।
उन्होंने बताया कि सनकादिक तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए वैकुंठ गए। वास्तव में वे अपने पिताजी से भगवान के धाम और रूप गुण लीला की कथा सुने थे, तो उनको दर्शन की लालसा थी, गए वैकुंठ में। तो वास्तविकता यह है कि भगवान की यह लालसा थी कि मैं जरा युद्ध करूं, लेकिन वैकुंठ में उनसे झगड़ा करने वाला कोई है नहीं, वहां तो केवल सब प्रेम करते हैं, और भगवान है रसिक शेखर, वे सब रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि मैं जब तक अपने ही किसी पार्षद को विरुद्ध भाव से भर करके और प्राकृत जगत में नहीं भेजूंगा, तो मैं युद्ध रस का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। ये सभी आचार्य बताते हैं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने लिखा। तो हुआ क्या, जब गए तो छह द्वार तो पार कर गए वैकुंठ, कोई नहीं रोका, सब जगह द्वारपाल खड़े थे, भगवान के स्वरूप जैसा, बिल्कुल देखने में भगवान जैसा लगता है, लेकिन दो चीज उनको नहीं होता है, एक भृगु जी का चरण चिन्ह और कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स, ये चिन्ह नहीं होता है, बाकी भगवान जैसा रहते। तो सातवें पर गए तो जय विजय खड़े थे, वो उनकी आंखें कुछ ऐसी क्रोधित जैसी लग रही थी, ये लड़के कहां से घूम रहे हैं। जबकि ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, भगवान के परम प्रिय ऋषि हैं, लेकिन भावना आ गई भगवान हृदय में बैठ करके कुछ ऐसा करना चाहते थे, तो उन लोगों ने ऐसे बेंत से रोक दिया दोनों तरफ से, ऐ चलो गेट आउट, इधर क्यों आ रहे हैं, ऐसे किया तिरस्कार जैसे। कहीं भी इनका तिरस्कार नहीं हुआ था, और जिनमें क्रोध कभी आ नहीं सकता उनमें भी क्रोध आ गया, वे लोग तो रोके हैं, ऋषियों में भी क्रोध आ गया, और क्रोध में लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों का कोई होश नहीं, तो कहते हैं तुम लोग भगवान के पास रहने लायक नहीं हो, यहां से जाओ आश्री जोनियों में, यहां रहने लायक नहीं हो। तब बताइए, चक्रवर्ती पाद जी ने इस पर लिखा है विस्तार से, ये कह रहे हैं कि बैकुंठ में रहने लायक तुम लोग नहीं हो, तो प्रश्न होगा कि इनको अपॉइंट कौन किया है, कौन रखा है बैकुंठ में, भगवान रखे हैं ना, तो प्रकारांतर से भगवान को अज्ञानी कह रहे हैं, बुद्धू कह रहे हैं कि नहीं रखने लायक आदमी को भी रख लिया है, आप जरा सोचिए ये बैकुंठ में रहने लायक नहीं है, मतलब बैकुंठ में कौन रहेगा नहीं रहेगा, कौन योग्य है और अयोग्य है, अब यही लोग राजा हो गए, अब यही निश्चित करेंगे, तो द्वारपालों को कह रहे हैं तो भगवान को भी कह सकते हैं कि आप यहां रहने लायक नहीं है, आप जाइए। तो वो तो क्रोध से आविष्ट हो गए हैं, बुद्धि काम कर नहीं रही है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वास्तव में भगवान जैसा कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं किसी के द्वारा, नहीं तो भगवान अपने से कैसे कहते पार्षदों को कि तुम लोग बैकुंठ से जाओ उधर और चलो हम तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो दूसरे से कार्य करा ली, वास्तविकता यह है। और यह केवल एक ही घटना हुई है बैकुंठ से आने की, समग्र भागवत में कहीं भी इसका नामो निशान नहीं मिलता, और लोग भी गिरते हैं, यही घटना है। और इस पर महाराज का प्रश्न हो रहा है भरे सभा, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये तो अश्रद्धा है बाबा, ये तो आदर के योग्य नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण यह प्रसंग है बैकुंठ की स्थिति को समझने के लिए, और भगवान का अपने पार्षदों से कितना घनिष्ठ संबंध होता है, वो जो जय विजय गिरने लगे तो भगवान से रो रो करके कह रहे हैं कि ठीक है भले किस हम जाएं, लेकिन आपकी स्मृति नहीं जानी चाहिए, भले आसुरी भाव से ही हम आपका स्मरण करें लेकिन दिन रात स्मरण रहना चाहिए, तो वही वैर भाव से भी दिन रात स्मरण रहा, भगवान का प्रेम था, तो वे कुछ दिन के बाद चले गए। यह प्रसंग बिल्कुल क्लियर स्थिति बताता है बैकुंठ की और पार्षदों की, और पार्षदों के साथ भगवान के संबंध की। केवल एक ही बार कुछ ऋषि जाकर के साफ दे दिए और दो आदमी वहां से गिरे, दो व्यक्ति, इस प्रकार की घटना और नहीं। और तृतीय स्कंध में लिखा गया है कि जब जय विजय गिर रहे थे विमान से, तो बैकुंठ में रहने वाले पार्षद सब हाहाकार करने लगे, रोने लगे, क्योंकि यह घटना एक ही बार हुई, बैकुंठ में कभी कोई दुख नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख हुआ कि हमारे दो साथी जा रहे हैं प्राकृत जगत, ये बहुत भारी दुख हो गया बैकुंठ के भक्तों में। अगर यह मान लिया जाए कि रोज वहां से लोग आते ही रहते हैं, तब तो रोज हाहाकार ही मचा रहता है हाहाकारो महान आसित, किसी बात को ठीक से शास्त्र के आलोक में समझ लेना चाहिए, नहीं तो आदमी गलत बात को ही सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी बात को ठीक से नहीं समझे तो कह दें चलो चलो टाल दें इसको, क्या समझने की जरूरत है, ये क्लियर है महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न से, और क्लियर है इसमें कोई संदेह नहीं है, जब गत्वा न निवर्तन्ते, ये शास्त्र का सिद्धांत है।
स्वाभाविक बात है जब भगवान आए,
हाँ
राम से
भगवान ही कर, और उनका अपराध यही था कि उन्होंने
भगवान के श्री चरण दर्शन के लिए बाधा
डाला, ये भी लिखा है। हाँ हाँ ये है, लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं सोलहवें अध्याय में तृतीय स्कंध के, तो ये कह रहे हैं कि अपने सेवक के द्वारा की हुई गलती स्वामी की मानी जाती है, इसलिए मेरी गलती है, आप मुझे क्षमा कर। तो भगवान हमेशा जय विजय के पक्ष में ही बोल रहे हैं। चक्रवर्ती पाद जी ने बहुत अच्छी टीका किया है, भगवान के वक्तव्य से पता चल रहा है कि भगवान उन ब्राह्मणों के प्रति खुश नहीं है बाहरी रूप से, सब उनका ही नाटक था, लेकिन वो अपना पक्ष कर रहे। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा कहीं कोई गलती कर दिया है और आप बारंबार कहिए कि हमारा बेटा गलती कर दिया, ये हमारी गलती है, तो इसका मतलब आपका प्रेम बेटे के प्रति ज्यादा सूचित हो रहा है। भगवान बारंबार कहते हैं कि हमारे पार्षदों ने गलती कर दिया, आप हमें क्षमा करें। तो भक्तों के प्रति कितना स्नेह है भगवान का वहां प्रकट हो रहा है। और वैसे कोई अपराध नहीं था, न जय विजय का था, न उन ब्राह्मणों का था, ये सब कुछ भगवान की इच्छा थी। वास्तव में वो लड़ना चाहते थे, खूब लड़े हिरण्यकश्यप के साथ और हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष के साथ तो इतना लड़ रहे थे कि ब्रह्मा जी आकर कहे कि अरे जल्दी मारिए, जल्दी मारिए, नहीं तो बाद में नहीं मरेगा। इतना देर तक भगवान क्रीड़ा करते रहे, तो अंत में मारे।
बताया कि जीव ये गुणों के मानते हैं, भगवान उस पर कभी नहीं कृपा करते हैं, कभी उससे मारते हैं, जैसे जो गुण है, तो भगवान के गुणों से प्रभावित कैसे हो जाते हैं?
गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो शुरू में ही आया था वास्तव में,
कल के वास्तव में
जी प्रभावित नहीं होते हैं। गुणों की रचना वो किए हैं, तो गुणों को स्वीकार करके जगत की सृष्टि आदि करते हैं, लेकिन बस में रहकर नहीं करते। जैसे एक प्रकार से देखा जाए, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, तो कोई कहेगा कि कार के बस में है, जिस स्पीड से कार चल रही है उस स्पीड से चल रहे हैं, उसमें बंद हुए हैं, लेकिन वास्तव में कार आपके अधीन है। आप जिधर स्टेयरिंग मोड़ेंगे उधर उसको जाना है। देखने में लग रहा है कि आप कार के अधीन है, लेकिन तत्वतः कार के अधीन नहीं, कार आपके अधीन है। उसी तरह से गुणों के अधीन भगवान नहीं है, गुण उनके अधीन है, प्रकृति उनके अधीन है, और ऐसा लगता है केवल कि वे अधीन, अधीन नहीं, गुणों का इस्तेमाल करके और उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कार के चार चक्के दौड़ रहे हैं, इतना बड़ा लोहा रबड़ सब दौड़ रहा है, वो तो ड्राइवर की इच्छा के अनुसार दौड़ रहा है, उसके अधीन है, रोक दे तो रुक जाए, मोड़ दे इधर उधर मोड़ जाएगा। लेकिन कोई कह सकता है कि उसको लेकर के कार भाग रही है, कार के अधीन हो गया है, लेकिन वास्तव में अधीन नहीं। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा था 100 अपराध माफ करूंगा। हाँ, यह भी देखिए भगवान का गुण है, जिस राजसूय सभा में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पूजा हुई थी और उनकी ही निंदा उस सभा में हो रही, फिर भी भगवान सहा, एक गाली कोई नहीं सह सकता है, भी सभा का प्रधान हो, उसकी शक्ति हो, लेकिन भगवान ने रोक दिया भीमसेन को सबको, और सुन रहे थे भगवान तो भीतर से आस्वादन कर रहे थे, उनको कोई दुख नहीं था। यही तो भगवान की विशेषता है वास्तव में, किसी के अपराध को सहन करना, स्नेह करना, जो व्यक्ति जितना ही सह सकता है वही वास्तव में महान है। तरोरि व सहिष्णु, में सहन शक्ति होनी चाहिए। नहीं, वो तो बाद में मारे गए। सबसे अंतिम व्यक्ति का वध जो भगवान ने किया वो था दंतवत्र, उसके बाद वो किसी का वध नहीं किया।
भाई
था, खास भाई नहीं था।
दूसरा प्रश्न ये कि भागवत मैंने पढ़ी तो कई जगह की तो रघु जी का वो चरण चिन्ह, और दूसरे वक्त
श्री वक्त,
वो क्या है?
वो भगवान के छाती पर बाएं भाग में एक गोल्डन रोमावली है, रुएं हैं जो बिल्कुल पीले वर्ण के हैं, चमचम चमकते हैं, और लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना गया है। तो भगवान का श्री के प्रति बहुत वात्सल्य भाव है, स्नेह है, इसलिए उसको श्री वत्स कहते हैं। बाएं भाग में कलेजा रहता है ना, सबके फेफड़े है रहता है डॉक्टर साहब। तो भगवान अपनी पत्नी को कलेजा जैसे प्रिय मानते हैं। लक्ष्मी जी को कलेजा जैसे श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। हाँ, वो लंच मन चिन्ह है, लंचन मन चिन्ह होता है, श्रीवत्स लक्ष्य में या श्रीवत्स चिन्ह है।
आप
मारे थे नहीं, भृगु जी छाती पर मारे थे यहाँ, और बाएं भाग में है। लक्ष्मी जी रंज हो गई ब्राह्मणों से, आगे तुम छाती पर लात मार रहे तो तुम लोग गरीब रहोगे। जो भी ऐसा विद्वान लोग कहा करते हैं,
तो ब्राह्मणों के लिए आशीर्वाद भी था कि इसलिए ब्राह्मण बिना धन की परवाह किए वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं।
हाँ, जो कुछ भी हो, लेकिन वो श्रीवत्स चिन्ह वही बाएं भाग में स्वर्ण रुमावली है, गोल्डन रुमावली, सांवले शरीर पर बहुत सुंदर लगती है रुमावली, तो वही लक्ष्मी जी का वास।
सुनहरी रेखा नहीं है, ऐसे कुछ सुनहरी रेखा
नहीं, रेखा नहीं है वो, रुमावली ही रेखा के रूप में दिखाई देती है, खरोच नहीं है शरीर पर।
आप अर्जुन ने कहा कि भाई आपने कहा है मैं चक्र नहीं लूंगा, मेरा काम है तो आप नहीं उठाएंगे चक्र।
उस समय नहीं मारे थे ना? हाँ, यह बात नहीं, भगवान मुक्त नहीं कर सकते थे, इन ब्राह्मण के वचन की रक्षा के लिए उनको रखे इसी जगत में। ऐसी बात नहीं भगवान मार करके भी मुक्त नहीं कर सकते थे, तो ब्राह्मण के वचन की रक्षा करनी थी, अथवा तीन तीन जन्म में आस्वादन करना था। जब झगड़ा ही करना है तो कुछ और टाइम तक कर ले भगवान। इसके लिए तीन जन्म रखे भगवान। अपनी गाली भी सुनना चाहते थे बहुत तरह। महाभारत में मैं पढ़ा हूँ, शिशुपाल इनको कह रहा है बहुत तरह की बात, दूसरे लोग कान बंद कर करके भाग गए सभा से, लेकिन भगवान सुनते रहे। खास करके रुक्मिणी का जब हरण कर लिया भगवान ने, तो शिशुपाल का बैर और बढ़ गया, क्योंकि उसका विवाह निश्चित हुआ था, वो दुल्हा बनकर गया था बारात लेकर, और श्री कृष्ण दुल्हन ले गए, तो बेचारा क्या वो नहीं क्रोधित। उस समय से तो इतना बैर बांध लिया कोई सीमा नहीं। ठीक है, समाप्त हरे
कृष्ण है। जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भागवत की आरती मतलब 21 डॉलर जो देना चाहें आपको, भागवत की आरती करना आरती करना
महापुराण वाद मत मीर मन सुख Thank you. Following is a class on Bhagavad Dharam given at the home of Chandubhai Patel on May 30th, 1999. Bhagavad Katha on the glories of Prahlad Maharaj will continue on the next tape.
Namaste Saraswat Deva Gauravartachari Nirvishesha Sunyavadi Paschade Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya
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 क्या सुनाऊं मैं बहुत विशाल ग्रंथ है भागवत वो तिलक किया है आप तिलक नहीं किए ये सब ये
बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, ऐसे जितने भी राजा मिथिला में हुए सबको जनक कहते हैं, मैथिल, विदेह और जनक सबके नाम थे। तो उसमें जो सीता जी के पिता थे उनका नाम था शिरध्वज। तो शिरध्वज जनक महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र आए थे जिन्हें 9 योगेश्वर कहा जाता है। एकादश स्कंध की यह कथा है। तो 9 योगेश्वर उस सभा में आए तो वे सनत कुमार की तरह चमक रहे थे, उनका शरीर बहुत तेजस्वी था। तो 9 योगेश्वरों का संग पाकर महाराज जनक ने 9 प्रश्न किया है। और समझ रहे हैं ना भाषा, 9 क्वेश्चंस पूछे रहे लोग। महाराज जनक ने 9 भाइयों से 9 प्रश्न किया और एक एक भाई एक एक प्रश्न का उत्तर दिए। तो उसमें एक प्रश्न का उत्तर यहां मैं कह रहा हूं। महाराज जनक ने पूछा कि भागवत धर्म क्या है, एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर देते हुए कवि जी कहते हैं, पहले पुत्र का नाम था कवि, कवि हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत द्रुमिल चमस करभाजन, 9 नाम थे विष्णु। तो कवि उत्तर देते हैं कि ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धे अंजह पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता अनितान। बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉन्फिडेंशियल समझकर भगवान ने अपने श्रीमुख से अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया है उसको भागवत धर्म कहते हैं। संसार में बहुत सी बातों का उपदेश किया गया है, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और भी बहुत प्रकार के धर्म, जैसे स्त्री धर्म, राज धर्म, दान धर्म, आपद धर्म। तो इन सब का उपदेश भगवान ने दूसरों के मुख से करवाया है। किसी के उपदेशक हैं मनु महाराज, किसी के जगवल्क जी, किसी के देवदास देव, किसी के कुछ, किसी के कुछ, लेकिन भागवत धर्म का उपदेश भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है डायरेक्ट और अपनी प्राप्ति के लिए। जीव का भगवान कृष्ण से नित्य संबंध है, तो उस संबंध को क्लियर समझाने के लिए और कैसे जीव भगवान को पा सकता है, अपने श्रीमुख से भगवान ने उपाय बताया है। उन उपायों को ही भागवत धर्म कहा जाता है। तो उस भागवत धर्म की विशेषता बताते हुए कवि जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भागवत धर्म का आचरण करे तो धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। यह ऐसा मार्ग है भक्ति का मार्ग भागवत धर्म, इस पर कोई आंख बंद करके और दौड़े भी तो न स्खलित होगा न गिरेगा, न स्लीप करेगा न गिरेगा। यह ऐसा मार्ग है। वे कहते हैं कि यान आस्थाय नरो राजन न प्रमादित कर ही चित धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलित न पते दिह। भक्ति मार्ग में स्खलन नहीं है और पतन नहीं है। यहां तक आंख बंद करके कोई धावन दौड़े तब भी नहीं गिरेगा न स्खलित होगा। धावन निमिल्यवा नेत्रे, आंख बंद करना। तो आंख क्या है इस साधना मार्ग में? श्रुति और स्मृति, ये दो आंखें हैं। इन्हीं दो के द्वारा हम देखते हैं कि भगवान क्या है, हम क्या है, आगे परलोक क्या है, क्या करेंगे तो मुक्त होंगे, क्या करेंगे तो बंध जाएंगे। इन सब बातों को जो दिखा रहे बता रहे उसको नेत्र कहते हैं। तो साधना मार्ग में श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि किसी को श्रुति का भी ज्ञान नहीं है, स्मृति का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो ठीक है, उसमें वो गिरेगा नहीं। और जो साधन है जैसे यज्ञ करना या ज्ञान मार्ग पर चलना, योग मार्ग पर चलना, बिना आंख खोले बिना शास्त्र के ज्ञान के संभव नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि किसी को कोई भी ज्ञान न हो, माला जपना चालू किया हरे कृष्ण बस ठीक है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है वो पूरा वेद शास्त्र पढ़ ले और तब जप करना चालू करे, कोई जरूरी नहीं। ये छोटा बच्चा भी भगवान की भक्ति कर सकता है हरे कृष्णा, उनका अपना स्वभाव चालू है। तिलक करके आया है लेकिन तो ये मार्ग ही ऐसा है, इतना सुंदर सुखद मार्ग है कि केवल चलने की आवश्यकता है, आदमी गिर नहीं सकता है इसमें और ना स्लिप करेगा। इसका अर्थ यह है कि जितना वो कर चुका उतना कंप्लीट है और फल निश्चित मिलेगा। दूसरे कर्मों में फल का निश्चय नहीं है, कृषिवत चापे फल निश्चय अभाव। कहा गया जैसे खेती किसान करता है तो खेती में फल होगा या नहीं होगा कोई निश्चय नहीं रहता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, पत्थर बर्फ और फसल नष्ट हो जाते हैं, कभी कोई रोग हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्योंकि सारा घर से बाहर हो रहा है, तो कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता कि इतनी फसल होगी ही। हम सोचते हैं कि एक एकड़ में 40 मन 50 मन अनाज हो और होता है 10 मन कभी कभी, है ना, कोई निश्चय नहीं रहा। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें फल निश्चित है, कोई घाटा नहीं है, सब लाभ ही लाभ है, इसीलिए इस मार्ग को अपनाना चाहिए। कैसे भी यदि भगवान का नाम मुख से आ रहा है तो कल्याण है, भगवान का दर्शन हो रहा है, प्रसाद खा रहा है जीव, या कुछ ग्रंथ पढ़ रहा है सुन रहा है तो उसका हित होगा ही, इसको भागवत धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयति। मनुष्य सबके पास है, जितने भी मनुष्य हैं सबके पास एक देह है, काय जिसको कहते हैं, देह है, आंख है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, अपने अपने ढंग की सबकी मन बुद्धि है। हमारा मन अपने प्रकार का है, आपका मन अपने प्रकार का है, तो भक्ति करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम दूसरे का मन अपने में फिट करके तब भक्ति करेंगे। जैसा हमारा मन है, जैसी इंद्रियां भगवान ने दिया है, जैसी बुद्धि दिया है, जैसा अहंकार है, उसी के द्वारा भजन करना है। जैसे मान लीजिए भगवान ने हमको वाणी दिया तो हमें जप करना है, तो हम दूसरे की जीभ अपने अंदर फिट करके जप नहीं करेंगे, भले हमारी तोतली बोली हो, अच्छा उच्चारण ना हो, लेकिन फिर भी हम इस जिह्वा से भगवान का नाम ले सकते हैं। और कई ऐसे काम हैं जबकि रोक है कि आप उच्चारण नहीं कर सकते, वेद के ऐसे मंत्र हैं यदि आपको बोलने नहीं आता है तो आप नहीं बोलेंगे, आपके बिहाफ में कोई ब्राह्मण बोलेगा, मना किया गया कि आप मत बोलिए। आप यज्ञ करा रहे हैं, सारा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्र आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बोलने नहीं आएगा। परंतु भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, जैसे नहीं हम भक्त बनने जा रहे हैं और हमारे लिए दूसरा जप करे हमें नहीं करने आएगा। नहीं, हमारे पास जो जीव है, जैसी उच्चारण शक्ति है, वो हम भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। कई तरह के भक्त हैं, उनके जप को आप सुनेंगे तो किसी का उच्चारण कुछ तोतली बोली में है, किसी का उच्चारण कुछ और है, किसी का उच्चारण बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान है उच्चारण नहीं देखते हैं कैसा उच्चारण हो रहा है, केवल ये देखते हैं कि बोल रहा है बस, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ રામ. પ્રત્યેક મનુષ્ય કે પાસે અપના મન હૈ, કિસી કા મન વિષય કે તરફ બહુત અધિક ધાવિત હો રહા હૈ, કિસી કા મન શુદ્ધ હૈ, કુછ હૈ, લેકિન જૈસા મન હૈ, કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા, જૈસા ભી મન હૈ ઉસી મન સે ભગવાન કા ચિંતન કરના હૈ. બડે બડે યોગી જૈસે નારદ જી, સુખદેવ ગોસ્વામી, યે ભી ભગવાન કા ચિંતન કરતે હોંગે, કરતે હી રહતે હૈ, ઓર હમ ભી ચિંતન કરતે હૈ, લેકિન વો જીતના શુદ્ધ ઢંગ સે ચિંતન કરેંગે વૈસા તો હમ કર નહીં સકતે, લેકિન ચિંતન કરને કો કહા જાયેગા તો હમે અપને મન સે હી ચિંતન કરના હૈ. હમ ઉનકા મન કહાં સે લાવેંગે, ઉતના તેજ મન ઓર ઉતના શુદ્ધ મન કહાં સે લાયેંગે. इसलिए अपने पास जैसा मन है और वानुषी का स्वभाव आ कई कई जन्मों में जैसा स्वभाव हो गया है, उस स्वभाव को ही भगवान को अर्पित करना है. कभी कभी देखा जाता है कोई कोई भक्त हुए हैं जो बड़े कड़े स्वभाव के होते हैं, लेकिन उस स्वभाव का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं. भक्तिवेद ठाकुर ने कहा है जैसे कुत्ता है, तो कुत्ता के पास क्या योग्यता है? कुत्ता के पास एक योग्यता है कि अपने स्वामी का कोई प्रतिपक्षी, कोई शत्रु यदि आ जाए दरवाजे पर तो भौंकना चालू करेगा, और कुछ करे या ना करे, केवल वो भौंके, भौंकना कहते हैं ना, वो भौं भौं करे तो मालिक प्रसन्न हो, ठीक है अपना काम किया, भले वो मालिक रक्षा करने में समर्थ ना हो, लेकिन अपनी कैपेसिटी इतनी ही है जो भों 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 करे भूखे, तो इसको अपना स्वभाव कहते हैं. कुत्ते का स्वभाव होता है कोई भी आ जाए तो बोले भूखता है, भूखने का मतलब उसके मन में भाव उठता है कि हु आर यू, व्हाई यू हैव कम हियर, कौन हो, केवे हरा, उसे पसंद नहीं पड़ता है इसलिए वो भूखता है. कुत्ते को देखकर, आदमी को देखकर, तो कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन उनका स्वभाव होता है दूसरों को भूखना चाहते हैं, दूसरे को डांटेंगे, तो ऐसे ऐसे भक्ति को भी भगवान स्वीकार किए. भगवान का कोई विपक्ष है, भगवान का निंदक है, तो उसके प्रति द्रोह रखना, उसके प्रति क्रोध करना, यह भी एक भक्ति है ऐसा बताया गया. और कुछ स्वभाव ऐसा होता है कि भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह नहीं करते, कुछ ऐसा स्वभाव होता है. कुछ स्वभाव ऐसा होता है कि भगवान से ऐसा संबंध जोड़ते हैं कि वे चाहते हैं कि भगवान और किसी से प्रेम न करें, हम ही से करें, ऐसे भी भक्त हुए. अगर कृष्ण दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनसे रूठ जाते हैं, क्यों बात किया दूसरे से. इसलिए राधा रानी भी है, अगर राधा रानी को थोड़ा भी पता चल जाए कि कृष्ण चंद्रावली के साथ गाय इधर उधर या अन्य गोपी के साथ, तो इनका मान चालू है, उनको ये पसंद नहीं है कि कोई कृष्ण दूसरे से भी प्रेम करे. और कुछ ऐसे भक्त हैं जो चाहते हैं कृष्ण सबसे प्रेम करे और सब कृष्ण से प्रेम करे. यदि राधा रानी का भी अस्थाई भाव यही है, संचारी भाव होता है चलने वाला जिसमें वो मान करती है, अस्थाई भाव यही है. तो सबके अपने अपने स्वभाव हैं, अपनी इंद्रियां हैं, अपना मन है, इनके द्वारा ही भगवान की सेवा करनी है. जैसी बोलने की शक्ति है वैसे बोलना चाहिए, जितनी देखने की आंख में शक्ति है उतना भगवान को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मन में संकल्प विकल्प करना चाहिए, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, प्रेम करूंगा, इस तरह से. और बुद्धि से भगवान के प्रचार की योजना बनानी चाहिए. अहंकार हमेशा यही मानना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ और किसी का नहीं हूँ, कृष्ण मेरे हैं, इसको शुद्ध अहंकार कहते हैं. हम कहीं भी जाएंगे मन में अहंकार बना रहता है. अहंकार का मतलब होता है मैं हूँ, मैं क्या हूँ। प्रत्येक मनुष्य मानता है मैं इस घर का हूँ, इसका पुत्र हूँ, इसका पिता हूँ, यह मेरी इज्जत है, इतना मेरा धन है, ये मेरा पोजीशन है, इसको अहंकार कहता है। शुद्ध अहंकार तब माना जाता है जबकि हमेशा मन में भावना हो मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण की भक्ति करना मेरा कार्य है, यही मेरी इज्जत है, यही मेरा सम्मान है। इस प्रकार के विचार हमेशा मन में उठे तो इसको अहंकार कहते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतः स्वभावः। अनुसृत स्वभाव अहंकार, मन में यही भावना हमेशा रहनी चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। अच्छा, इस पर जनक महाराज ने पूछा कि आप क्लियर बताइए कि भागवत धर्म का सार क्या है। इस पर कबीर जी बताते हैं, श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थानि गायन विलज्जो विचरे दसंग। भगवान के गुणों को सुनना चाहिए और उनके जो नाम गुण वेद में लिखे गए हैं, शास्त्र में लिखे गए हैं और लोक में भी, लोक भाषा में भी जो प्रसिद्ध है, जैसे गुजराती में या ब्रज भाषा में, ये कहीं भी लोक भाषा में भी यदि भगवान के गीत हैं तो उन्हें सुनना चाहिए, गाना चाहिए बिलज्जा, बिना लज्जा के। बिलज्जा शब्द विगत लज्जा, लज्जा शब्द, लज्जा नहीं करनी चाहिए, जोर जोर से भगवान का नाम गाना चाहिए और सुनना चाहिए उनका गुण, यही है भागवत धर्म का सार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज के युग में आदमी एक मिथ्या लज्जा अपना लेता है, मुझे लाज लग रही है क्या कहें मतलब लोग समझते हैं कि ये समाज से भिन्न बात है, लज्जा करते हैं। कहीं कहीं ऐसा समाज होता है जिसमें लोग भगवान का नाम बोलना भी कठिन होता है, तो लज्जा नहीं करनी चाहिए। यहाँ शब्द है गायन लज्जा, विगत लज्जा हसन, लाज छोड़ करके गाना चाहिए। कई ऐसा कार्य आदमी संसार में कर रहा है जिसमें किसी को कोई लज्जा ही नहीं है, खासकर के इस अमेरिका में देखा जाता है तो लाज नाम की कोई चीज है ही नहीं लेकिन भजन करने में लाज है माला झोली टांग कर चलने में लज्जा है और चीज में लज्जा नहीं। हरे कृष्ण। तो जैसे तिलक करना और भगवान का नाम जपते हुए चलना, लज्जा लगती है वास्तव में जो लोग सामाजिक हैं, सामाजिक अर्थ है समाज में कार्य करते हैं तो उनको लज्जा लगती है, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि लज्जा नहीं करनी चाहिए। और जो साधु हो गए हैं, जो वेश भी धारण किए हैं, तो उनको लज्जा नहीं आती है। जैसे हम लोग हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कोई ऑफिस हो, कुछ भी हो, इसी वेश में जाना है। कुछ लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं ये क्या तमाशा है पूरा लाल कपड़ा, पूरा लाल कपड़ और तिलक सीखा और माला झोली, वो भी कुछ बुदबुदा रहा है, कुछ बोल रहा है एक बार मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, जैक्सनविल गया था राधा जीवन प्रभु के साथ, तो हमको विदा कर दे, मैं बैठा था कुछ देर वेटिंग कर रहा था, एक विदेश के ही आदमी बैठे मेरे पास, सीधा पूछे हु आर यू एंड व्हाट आर यू तो मैं तो बड़ा चकित हुआ. Who are you? मैंने कहा I am servant of God. Who is God? तो मैं झोली पर चित्र था दिखाया राधा कृष्ण का. मैंने कहा कि He is God. He is God. What he is playing? The flute. वो फ्लूट बजा रहा है. ओ गॉड प्लेज फ्लूट. तो इस बात पर तो माना कि अच्छा ठीक है ये भगवान है, ये भगवान का फोटो है. लेकिन तुम भगवान के सर्वेंट हो तो ये क्या किए हो? ये शरीर पर पेंट, ये कटिंग बाल का, ये क्या किए हो? बहुत उपहास कर रहा था एक और साथी उसका था. वो सबसे ज्यादा इस पर चकित है ये पेंट क्यों किया है. वो समझा कि वास्तव में कोई बाजार से लेकर के पेंट किया होगा. मैं कहा कि ये क्ले है, वो वेरी होली क्ले. मैं समझाया उसको. ओ होली क्ले. तो हाथ जोड़ा तिलक के प्रति लास्ट में. मैं कहा कि दिस इज वेरी होली क्ले फ्रॉम इंडिया एंड एक्चुअली दिस इज द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. मैं गोपी जनों को नहीं बताया, मैं बताया भगवान का चरण राज है. तो वो जिज्ञासा करने लगा वेयर वेयर गॉड वॉक्ड. बताया कि हाँ ही डांस ही वॉक्ड. वृंदावन की बातें उसको बताया. तो बेचारा सुनने लगा, ध्यान से सुन रहा था. लेकिन वो इस बात पर कन्विंस नहीं हो पाया कि ये कंठी और ये माला और लाल वस्त्र. कहा कि ना यू शुड वियर व्हाइट क्लॉथ. कहा सादा पहनो, सादा जीवन रहो, ये लाल कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है. वैसे कहने लगा. लेकिन बाद में मैं समझाया कि आई एम ऑन मैरिज सो दिस इज ट्रेडिशन. हमको कुछ भिन्न रहना चाहिए समाज से, इसके लिए ये सब वस्त्र है. तब बाद में मान गया. लेकिन इतना ज्यादा तंग करने के लिए मेरे पास बैठा था. मैं तो समझ गया लेकिन मैं धीरज रखा था. मैं उबा नहीं, जो भी पूछेगा मैं उत्तर देता जाऊंगा. एक बार जा रहा था एक विमान परिचारिका, विमान में जो सेवा करती हैं, वो मैं ले गया त्रिदंड हाथ में. ऐसे मैं कहा कि इसको कहीं रख दो पुत दिस के लिए. तो वो कहते व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस. मैं कहा कि दीज आर वेरी होली स्टिक्स. इसको रखो. मैं तो जब मैं होली कहा तो वो भी हाथ जोड़िए उस बांस को और बहुत सुरक्षित लेकर रख करके हमको एक टिकट दी. जहां पायलट था वहां निकट में रख. सुनने पर श्रद्धा हो गई. लेकिन यदि मान लीजिए हम ही लज्जा करने लगे, हम सोचे क्या कहेंगे लोग, इसलिए अपना तिलक भी धो ले और वस्त्र उतार करके भी पैंट पहन ले, माला झोली भी रख दे, तब क्या होगा? तब तो भगवान का प्रचार समाप्त हो जाएगा. तो इसी तरह से गृहस्थों के लिए भी बात है. वास्तव में गृहस्थ भी तो किसी न किसी मान्यता में है ही. कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है. हिंदुओं में भी कई प्रकार के विचार हैं. तो अपना जो पंथ है, अपनी जो मान्यता है कि हमें ये भेष बनाना है, जैसे तिलक है, तो तिलक करना ही है, रखना चाहिए तिलक और भगवान का नाम जपते हुए चलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी शुद्ध होंगे. तो मैं यह नहीं कहता हूं कि जबरदस्ती जहां इनकन्वीनियंस हो वहां भी ये सब करता चले, लेकिन जहां अवसर हो तो वहां अपने वेशभूषा में चलना चाहिए, अपने पोशाक में चलना चाहिए. पोशाक में यह माला झोली लटका कर चलना एक बहुत एसेंशियल पोशाक है. एक दिन सागर में मैं था, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में सागर. वहां एक डॉक्टर साहब हैं. तो भी डॉक्टर साहब
पहले कुछ क्रिमिनल टाइप के थे, अभक्त हो गए, तो उनके पास एक प्रोफेसर आए, उनकी पत्नी बीमार हो गई थी। प्रोफेसर साहब आए तो पहले चलिए डॉक्टर साहब देखने के लिए, हमारी पत्नी बीमार है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है चलता हूँ, जरा राइफल ले लूँ अपना। डॉक्टर ने कहा कि जरा मैं अपना राइफल लेकर के आ रहा हूँ। तो वो तो प्रोफेसर बेचारा कांपने लगा। वो बाद में हमसे बता रहा था कि मैं सोचा कि हमारी पत्नी को मारेगा कि हमको मारेगा, राइफल और पहले का प्रसिद्ध व्यक्ति था। मैं जब गया उनके पास तो लगी कहने की महाराज जब वो डॉक्टर कहा कि मैं जरा अपना राइफल ले लूं तो मेरा तो होश उड़ गया। लेकिन वो आए कार में बैठे तो राइफल लिए नहीं थे, तो उन्होंने कहा हमसे बता रहे थे। मैंने पूछा डॉक्टर से कि तू राइफल लाने गए लेकर नहीं आए, उसे यही तो राइफल है, यही राइफल उन्होंने कहा कि हम लोग माया से युद्ध कर रहे हैं, ये अपना राइफल लेकर चलते हैं और जब भी चलाना होता है चलाना चालू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो उस व्यक्ति ने पूछा प्रोफेसर ने कि तो क्या इसको ऐसे टांगे चलते हैं, कभी हमेशा जप भी करते हैं, कभी कभी केवल टांगे हुए घूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुलिस को देखे हो, ज्यादातर तो टांगे हुए घूमते हैं, चलाते कब है। पुलिस बहुत भारी राइफल लेकर घूमते रहते हैं इंडिया में देखे। और चलाते हुए तो कभी नहीं देखा गया। तो कम से कम इस तरह से हम लोगों को टांग कर चलना तो चाहिए। देखिए छोटा बच्चा टांग कर आया, अपना राइफल टांग करके चला, अपने यूनिफॉर्म में है। और इधर तो लड़ाई लगी ही हुई है माया के साथ, इसलिए जब अवसर मिले तो फायरिंग करना चाहिए।
हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम।
लेकिन अपना हथियार अपने साथ रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब डॉक्टर ने कहा कि हम इसको राइफल कहते हैं, जरा मैं अपना राइफल ले लूं। तो हम लोग तो अपने अपने राइफल ले करके चले हैं, और कितने लोग हैं जो बिना अस्त्र के चले। बिना वीपन के नहीं चलना चाहिए। सबका वीपन यही है, यही अस्त्र है वास्तव में। ऐसे कभी आप इसको बैग में रख सकते हैं, झोला में रख सकते हैं, या पैंट के थैली में रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी गर्दन में भी रख करके शान के साथ चलना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ, या मैं इस्कान का हूँ, मैं प्रभुपाद जी का हूँ, ये भावना होनी चाहिए। देखने से ही पता लग जाता है, इसको कोई देखे आज के युग में तो कहेगा ओ हरे कृष्ण वाले हैं, हाँ हरे कृष्ण। ये पता लग जाता है। तो विलज्जा शब्द पर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि लाज नहीं करनी चाहिए। जीवन बीत रहा है, बीतते बीतते एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो अपने स्थिति में रहना चाहिए। जब जब करने का अवसर आए तो जब करना चाहिए, पढ़ने का अवसर आए पढ़ना चाहिए, सत्संग का श्रवण का अवसर आए तो सुनना चाहिए। इस तरह से कभी जब करने में, कभी पढ़ने में, कभी सुनने में, कभी भगवान के दर्शन में, कीर्तन में जीवन कट जाएगा, बीत जाएगा। थोड़ा थोड़ा रोज करते करते वह बहुत अधिक हो जाता है। जैसा मैं अनुभव किया हूँ भिखू भाई के परिवार के लोगों के साथ, तो संग होता है, सुनते हैं तो सबके मन में आ जाती है बात, जब करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद सुना जाता है कि शिथिल हो गया है, कम हो गया है, ये कोई बात नहीं, लेकिन फिर से ग्रहण करना चाहिए, फिर से ग्रहण करना चाहिए। और उस पर भी जब एक भागवत पुरुष एक वैष्णव भाई मिले हैं, वो भी मोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई यदि वैष्णव हो तो छोटे भाइयों का एक भाग्य माना जाता है, क्योंकि बड़ा भाई पिता जैसा माना गया। तो बड़ा भाई जो कार्य कर रहा हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो, तो उस भक्ति को अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। निश्चित है भिखु भाई के अन्य भाइयों का या इनके परिवार का भाग्य है कि जो परिवार का बड़ा व्यक्ति है वो कृष्ण का भक्त है। तो कितना भी वे भूलेंगे तब भी कुछ न कुछ तो भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अनुगमन होता ही रहता है। कई बातों में अपेक्षा रहती है बड़े भाई की, बड़े भाई जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये भाग्य की बात है, तो अपने भाग्य को संवारना चाहिए, प्रतिदिन कुछ माला जप करना चाहिए, यही आग्रह है और यही भागवत धर्म है। वास्तव में कुछ जप करना और कुछ पढ़ना है, बस दो ही कार्य करना है। बाकी प्रसाद सब लोग खाते ही होंगे, भोजन में सुधार है, कुछ जॉब करें और कुछ पढ़ें, समय पर कभी कभी सुना करें, इससे जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। मैं कोई प्रश्न है
अपने अपने काम के व्यक्ति में लाभ ही लाभ है
जी।
तो जो लोग भक्ति करते हैं, माला करते हैं, श्रवण करते हैं, शादी की सेवा करते हैं, लेकिन जिन लोगों के सीधे गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु अपना नहीं है
जी,
और जिन्होंने गुरु अपना है, तो दोनों में फर्क क्या है?
वास्तव में किसी भी मार्ग में अपना एक लीडर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा कहा गया है कि गुरु होना चाहिए, गुरु के गाइडेंस में भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो स्वतंत्र जो व्यक्ति भक्ति करता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कर पाएगा। आज कल रहा है, कल छोड़ देगा। गुरु स्वीकार करने के बाद भी कुछ लापरवाही आदमी करता है, लेकिन फिर भी गुरु यदि समर्थ है तो वो शिष्य की रक्षा कर लेता है। समय समय पर उपदेश द्वारा या शुभ संकल्प द्वारा शिष्य की रक्षा करता है। इसलिए गुरु स्वीकार करना चाहिए। गुरु स्वीकार करके भजन जो होता है वो बड़ा अच्छा माना गया है, शास्त्र यही बताता है। बिना गुरु के भजन ठीक है, भगवान की भक्ति को एनी हाउ किया जाए अच्छा है, लेकिन गुरु के गाइडेंस में, वैष्णव गुरु हो और उसके गाइडेंस में जो भक्ति की जाती है तो वही 16 आना ठीक, 100% उचित समर्पण करना चाहिए। यदि वास्तव में हमको भगवान को पाना है तो समर्पण करेंगे। जिसके हृदय में लगन है भगवान के प्रति कि हमको पाना है, कृष्ण को पाना है, तो वह व्यक्ति अवश्य ऐसे व्यक्ति को वरण करता है जो उसको कृष्ण की प्राप्ति करा दे, उसको लगा दे, तो समर्पण करता है। समर्पण का भाव होना चाहिए भक्ति में, दीनता और समर्पण ही मुख्य चीज है। कोई ये व्यक्ति सोचे कि हमको गुरु की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब समर्पण और दीनता उसके जीवन में नहीं है, उदंडता है। गुरु स्वीकार करके रहना चाहिए, जरूरी
है। समझो कि हमारा गुरु नहीं है और हम प्रभुपाद जी को गुरु मान रहे हैं, तो हमने इसे समर्पण किया, तो मरने के बाद हमारी गति क्या होगी?
वो तो सब कुछ भजन पर निर्भर करता है। यदि वास्तव में वो ठीक भजन है तो सदगति तो होगी ही, लेकिन यहाँ बात यह कि मान लीजिए आज कोई प्रभुपाद जी को गुरु मान ले मन में, या कृष्ण को ही मान ले, या चैतन्य महाप्रभु को ही गुरु मान ले, लेकिन उसका वह मानना प्रभुपाद को गुरु मानना नहीं है, वो अपने मन को गुरु मान रहा है। वास्तविक बात यह है, वह तो मनमाना चलना हुआ,
इस तरह की विधि शास्त्र नहीं देता है कि गुरु मान लो, मानने मात्र से ही गुरु गुरु नहीं होता है। गुरु वास्तव में होता है कोई किसी का, किसी के द्वारा उसका मन भगवान में लगा या भक्ति मार्ग में प्रवेश किया भक्ति किया, तो गुरु एक पद है, केवल हमारे मान्यता की अपेक्षा नहीं रखता है वह। जैसे आप मान लीजिए कोई पिता है, पिता के द्वारा पुत्र हुआ और पुत्र किसी और को मान लो, फिर मेरा पिता ये है, लेकिन जो पिता है वही पिता रहेगा, हम माने या न माने। उसी तरह से कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिसके कृपा से, जिसके प्रभाव से भजन हो, भक्ति हो, वो गुरु होता है, और उसी को गुरु रूप में वर्णन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ऐसे कहने के लिए तो कोई कहा, हम प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं, हम इसको गुरु मानते हैं, उसको गुरु मानते हैं, तो ये तो इस तरह की परंपराएं देखी नहीं गई है। नहीं तो प्रभुपाद को क्यों गुरु माना जाए, कृष्ण को ही क्यों नहीं मान लिया जाए? कृष्ण ही तो सब कुछ है, कृष्ण के उपदेशों को ही तो प्रभुपाद जी प्रचारित किए हैं। जब मानना ही है तो कृष्ण को ही क्यों न माना जाए, जो क्या हर्ज है। लेकिन वास्तव में ये भी बात अच्छा है, प्रभुपाद जी गुरु मानना चाहिए, और भी वैष्णव आचार्य भी गुरु मानना चाहिए, वर्तमान में भी और भी गुरु मानना चाहिए, लेकिन ऐसा भी व्यक्ति जीवन में हो जिसके अधीन अपने को समर्पित करना चाहिए, ऐसे जरूरी होता है। यदि विश्वास नहीं है कि हम जिसको समर्पण कर रहे हैं वो पहुंचाएगा हमको, तो नहीं विश्वास हो तो मत समर्पण करें, क्योंकि यह विश्वास का मार्ग है। जैसे मान लीजिए हम जिस ट्रेन पर चढ़ने जा रहे हैं और हमको विश्वास नहीं है ड्राइवर पर, ऐसा लग रहा है कि वो ले जा करके एक्सीडेंट कर देगा, मर जाएंगे, तो नहीं चढ़ना ही ठीक है। अविश्वास के साथ समर्पण नहीं होता है, समर्पण में तो विश्वास ही मुख्य चीज है कि ये हमारे जीवन को पार कर देगा, हमको ले चलेगा, तब समर्पण करना चाहिए। समर्पण है जबरदस्ती नहीं किया जाता है, और जबरदस्ती समर्पण कराने पर वो चलता भी नहीं, परंतु समर्पण करना है ये सिद्धांत मान करके चलना चाहिए। हमें समर्पण करना है योग्य जगह पर, जैसे मान लीजिए हमको नदी पार करना है, भयंकर नदी है, बाढ़ आई है और नौकाएं बहुत हैं, नाविक भी मान लीजिए बहुत, कोई कहे कि हम किसी नाविक को स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वतः पार करेंगे, तो भी गलत। लेकिन अगर उसकी स्वतंत्रता है कि भाई वो ठीक से मिला ले परंपरा से जैसे तैसे कि ये नाविक जो है वो पार कर देगा, और पहले से देख ले कि इसने कुछ लोगों को पार किया है, अपना वो मिला सकता है, ताकि हाँ ये नाविक ठीक है, तो नाविक को समर्पण तो करना ही पड़ेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि कोई पहले जो नाविक था अब नहीं नौका चला रहा है उसको मैं समर्पण करूंगा, वो ठीक है, वो बहुत एक्सपर्ट नाविक था लेकिन इस समय उस नदी में नहीं है, तो वर्तमान में किसी नाविक को स्वीकार करना पड़ेगा। ये विधि है पार होने की, वास्तव में दीनता चाहिए, जो मैं शुरू में कहा, प्रेम चाहिए भगवान से, दीनता चाहिए। गुरु जो स्वीकार किया जाता है, गुरु को अपना जीवन माना जाता है, वास्तव में भगवान के बाद यदि कोई है उसके लिए तो गुरु होता है। हमारे यहाँ लोक में कोई किसी को कुछ कहता है, ये करो ये करो, तो आदमी कहता है कभी कभी उद्विग्न होकर, क्या तुम मेरे गुरु हो कि मान लो इसका मतलब है कि गुरु की बात माननी ही है मानना है तो वह व्यक्ति धन्य है जिसके जीवन में कोई गाइड है, वास्तव में भगवान को पाने में, माया को पार करने में, वो तो एक धन्य व्यक्ति है, उसका सौभाग्य है उसके लिए कोई गाइड है। गुरु गाइड, गाइड वास्तव में होना चाहिए, केवल नाम भर का गुरु नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाव भर का नाविक हो, केवल नाम ही हो और नौका न चलाने जानता हो, तब तो ले जाकर डुबा देगा, बीच में मार डालेगा। असल में हुआ क्या है आज के युग में कि बहुत से नाविक ऐसे ही मिल रहे हैं, ले जाने के डुबा दे, स्वयं ही मर गए और कभी मार दिए, इसीलिए लोग डरते तो डर करके कहते हैं अच्छा है प्रभुपाद जी गुरु है, अच्छा एक गुरु लेकिन फिर भी यह कोई प्रमाणिक चीज नहीं। कोई नाविक ले जाकर के नौका डुबा दे रहा है तो कुछ और नाविक चाहिए ना, अच्छा नाविक चुनना चाहिए और आश्रय लेना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए और भजन करना चाहिए। गुरुओं के लक्षण शास्त्रों में दिए गए हैं, लक्षण है। लक्षण में दो मुख्य लक्षण है, एक तो वह भगवान कृष्ण का परम भक्त होना चाहिए और दूसरा वह वेद शास्त्र में प्रवीण होना चाहिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। स्नात का अर्थ होता है स्नान किया हुआ और निष्णात मतलब नितरान स्नात, जो खूब अच्छी तरह से जानता है शास्त्रों को और भगवान में भक्ति है उसकी, प्रेम है, ये मुख्य क्वालिफिकेशन है। इसके साथ और भी है जिसमें भोगों की वासना नहीं है, मान सम्मान की इच्छा नहीं है, वास्तव में शिष्य का वो हितैषी है, शिष्य को पार करना चाहता है, न कि शिष्य का ही धन छीनना चाहता हो लेना चाहता हो। आजकल ऐसे बहुत से गुरु हैं जो शिष्य बनाते हैं तो शिष्य का धन लेने के लिए, पार करने के लिए नहीं, शिष्य बना लिया और चिट्ठी भेजे कि हमको इतना पैसा की जरूरत है भेज दो, ये कैसा गुरु है। तो गुण है उसके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए और भगवान की भक्ति में रचा पचा है। और गुरु के लिए सबसे बड़ा गुण यही दो है, भगवान का भक्त और शास्त्र की जानकारी। जिसे शास्त्र की जानकारी नहीं है वो गुरु नहीं बन सकता, ये निश्चित, क्योंकि शास्त्र पार करने के लिए, भगवान को प्राप्त कराने के लिए बनाए गए हैं। तो शास्त्र के मर्म को जो ठीक ठीक जानता है और प्रस्तुत कर सकता है, बता सकता है, तो गुरु का एक यह क्वालिफिकेशन अनिवार्य। और यह क्वालिफिकेशन तभी आता है जब वह व्यक्ति परंपरा में होता है, उसका गुरु ठीक परंपरा में रहा हो, उसका गुरु ऐसे रहा हो, उसका गुरु ठीक से बातें आ रही है। तो आजकल तो केवल गुरु शब्द लग गया किसी में, बस उसी को लोग मानने लगते हैं। देख रहे हैं दुनिया में कितना गुरु गुरु। कल हम एक जगह गए थे एक व्यक्ति से भेंट करने के लिए, हम कह रहे थे कि महामंत्र जपना चाहिए, तो उधर से जवाब मिल रहा था सब मंत्र एक ही है, सब देवता एक है, सब मंत्र एक है, और हम कृष्ण के देह को नहीं मानते, कृष्ण के आत्मा को मानते, कृष्ण के आत्मा को मानते हैं और गुरु के पादुका को रखकर वही पूजा कर, दीति वही है। घर में दीति नाम से कोई चीज है तो गुरु का खड़ा है, गुरु का जूता है, बस इस तरह की बात। आजकल बड़ा खतरा है, गुरु शब्द केवल लोग जानते हैं, गुरु शब्द लगा हुआ है कहा गुरु है गुरु है। बाजार में कोई जाता है सामान लेता है, खास करके भारत वर्ष में घड़ा भी कोई खरीदने जाता है तो घड़ा को थोक करके देखता है छूटा तो नहीं है कमजोर की नहीं है, और गुरु बनाने जा रहे तो बिना ठेके बना लेंगे देखेंगे हमारे काम के लायक है कि नहीं है उसका इतिहास देखेंगे पूर्व का, उसकी वर्तमान दशा देखेंगे और लोगों से पूछेंगे कैसा है क्या है, तब समर्पण करेंगे। समर्पण करेंगे तो रियली समर्पण कर देंगे, छोड़ दिया अपने जीवन को उसके पीछे, लेकिन समर्पण करने से पहले पूरी स्वतंत्रता है, खूब अच्छा से देख ले विचार कर ले, लेकिन समर्पण होना चाहिए। तो गुरु के ये सब क्वालिफिकेशन शास्त्रों में दिए गए, अब कम से कम उतना तो जानना पड़ेगा, जो व्यक्ति गुरु बनाना चाहता है तो गुरु किसे कहते हैं इसकी तो जानकारी उसको होनी चाहिए।
जिम्मेवारी ठगा जाएगा तो जिम्मेवारी दूसरे पर नहीं आएगी। आजकल लोग कह रहे थे हमको क्या पता है कौन अच्छा गुरु है क्या नहीं, किसको पता होगा? आपको पता नहीं होगा।